है उतना करोड़ों करोड़ों सिंधुओं को भी संपूर्ण विश्व के संपूर्ण माधुर्य रस को संचित कर लिया जाए तो उसके एक कण की तुलना में वो नहीं आ सकता। श्रीमद्भागवत के वेणुगीत में स्पंदनम गतिमताम कुलकस्तरुणाम निर्योग पाठ कृत लक्षण योर विचित्रम और श्री रूप गोस्वामी पाद अपनी धारा में कहते हैं कई श्लोकों में कि सारे विश्व में आप देखो कहीं भी इस अमृत की कोई उपमा और तुलना नहीं है। महाराज तुम बनू और भगवान शिव अपनी समाधि में और ब्रह्मा जी भी मेधा जब वंशी नाद को श्रवण करते हैं तो उस वंशी के नाद के एक कण की ताल तरंग माला में गंगा के सिर पर धारण करने वाले शिव भी निमग्न और निमंजित हो जाते हैं। तुम भक्ति गंधर्व भी परंतु गोस्वामी पाद ने कहा कि नहीं ये कृष्ण नाम माधुर्य माधुर्य परिपूर्णित परिप्लावित नहीं है। ये तो विषयों का आकार है घोर दर्द। इसमें तो इतना विष है इतना भयंकर विष है शेष के कणों में और शिव के कंठ के सर्पों में और वासुकी आदि के सब नागराजों के संपूर्ण विश्व समुद्रों को संचित किया जाए तो भी कृष्ण नाम के भीतर रहने वाले विश्व की तुलना नहीं हो सकती। और सुंदर पीड़ा फिर नरकाल कुंड कटका गर्वश्य देवासनु स्वरया तेन मोरा सुधा मधुरिमा अंधकार संकोचिन हेमा सुंदर इस नाम को एक कण भी किसी संत के मुख से किसी गुरुजन के मुख से अगर श्रवण कर लिया है कर्णबंध में प्रवेश हो गया है तो इतना तीव्र कंठ है कि बड़े बड़े यज्ञ करके योग करके समाधि लगा करके तब अनुष्ठान तीर्थाकल प्रवृत्ति अपूर्वत्व संभावी कोटि कोटि अपूर्वत्व संभावी सत्कृत्य समवाय संपन्न करने के बाद भी जिन नकारात्मक वृत्तियों से विमुक्त होने का सुयोग नहीं मिल सकता एक बार कृष्ण नाम कहने से ही उसके विष के प्रभाव से संपूर्ण प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य के जितने दहेज विष हैं वो विष मर जाते हैं। कृष्ण प्रेम आ रहा है कृष्ण प्रेम से एक बार आह भर करके करा करके इस नाम का उच्चारण हो जाए तो जितना भी हमारे जीवन में जन्म जन्म का संचित हलाहल है विरल है वो सब मुक्त हो जाए सब निरुक्त हो जाए और उसके स्थान के ऊपर जितना भी अभी निखिल माधुर्य है वो संपूर्ण माधुर्य हमारी हृदय संपुटी में तरंगायित हो जाए। कृष्ण प्रेम और कृष्ण नाम इन दोनों की महिमा को लेकर के महिमा को लेकर के जो श्रीमद ऋतु गोस्वामी पाद में विदग्ध माधव में ललित माधव में भक्ति रसामृत सिंधु में उज्ज्वल नीलमणि में और पद्यावली जैसा विराट वर्णन किया है जिनका नाम है जिनकी महिमा है ये भी चमत्कृत हो गए चकित हो गए। महाप्रभु बार बार गोस्वामी का एक एक श्लोक पर आश्लेष करते थे आलिंगन करते थे उनके बल्लाट का चुंबन करते थे और हरभो भट्टाचार्य हरिदास और संतवासादी भक्त वृंद के सामने उनके कवित्व का जय जयकार करते थे स्तुति करते थे और इसको सुन करके भक्त लोगों के प्राण आप्लावित होते थे धन्य होते थे। वैसे तो परमार्थ में एक बात का सिद्धांत है कि अनंग अलंकार में होता है उसके समान वही है परंतु विनम्रता से क्षमा याचना करते हुए मैं तो इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ इतने बड़े चतुर्वेदी जी बैठे हैं लेकिन जहाँ तक थोड़ा सा साहित्य दर्पण का जो प्रकाश रसगंगाथ है और कविकरण पूर्व का, जिन्होंने महाप्रभु के चरणों का अंतुष्ट चूषण करके और इतना दिव्य रसामृत का आस्वादन किया, दामोदर और भक्त कहते थे महाराज आपका पैर झूठा कर रहा है, बोले पैर झूठा नहीं कर रहा है, जाने कौन कौन सा रस चूषण कर रहा है, इसके रूप में से जब काव्य कादंबरी निश्चित होकर के परिवर्षिता होगी, हजारों संतप्त मरुस्थलीय हृदय परिप्लावित होकर के प्रेम कांक्षा अलग कवि को प्रकट करने में सक्षम हो जाएंगे। अनुपात के विषय में तो केवल मैं इतना ही निवेदन करता हूँ, मुझे थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा हम तो निवासी हैं, हमारी चतुर्वेदी जी की शोभा पंडित होने में है, हम ब्रजवासियों की शोभा तो दमाग होने में है, हमारा तो दमाग ऊपर है। उसी आधार से जो थोड़ा बहुत गुरु चरणों में बैठ करके स्वाध्याय सुयोग सुलभ हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान है अंग्रेजी साहित्य का भी, शैली कीट्स बायरन, मैं विद्यार्थी काल में जब मैं पढ़ता था लाहौर में, साहित्य विषय में मुझे थोड़ा सा ज्ञान है। फिर इधर भी विद्वान के मुख से कालिदास भवभूति मार, और फिर अपने युग के भी, लेकिन जब थोड़ा भी अवकाश होने पर जब श्री गोस्वामी पाद के श्लोकों का अवलोकन होता है, जाने क्यों मन में से ये भक्ति होती है कि रूप गोस्वामी के मुंह से कोई कवि नहीं बोल रहा है, स्वयं रसरूप कृष्ण और राधा कृष्ण स्वरूप श्री गोविंद ही बोल रहे हैं, श्री गोराम ही बोल रहे हैं, उनके काव्यों में, नाटकों में, उनके काव्यों में, क्योंकि ये तो आलोचना का समय नहीं है, चतुर्वेदी जी को सुनेंगे, मैं थोड़ा स्वस्थ भी नहीं हूँ, और फिर एक थोड़ी धाराबंदी की हो रहा है, बीच में भग्न हो गई, लेकिन फिर भी दृष्टि में वाणी से सब कुछ कहा जाए ये संभव नहीं है, लेकिन कोई क्षण होता है जब हृदय में बहुत स्पंदन हो जाता है, तरंगें उठने लगती हैं, और अनुभव होता है कि जैसे कोई तैरना न जानने वाला व्यक्ति किसी अगम धारा में प्रविष्ट कर जाए और दूर उतराने लगता है, ऐसे ही जिन्होंने श्रीमद गोस्वामी चरण के दिव्य ग्रंथों का अवलोकन किया है, उनके पदों का काव्यों का, वे ऐसी तरंगों के आवर्त विवर्त में डूब जाते हैं कि उसमें से वही निकल सकता है जिनको कृष्ण चरणारविंद का तप प्राप्त हुआ है। दूसरा उपाय इसलिए केवल गौड़ीय वैष्णवों के प्राण ही नहीं, संपूर्ण विश्व वैष्णव बांगमय के किसी भी बड़े से बड़े महानुभाव की तुलना उपमा तो नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी की कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है, एक संपूर्ण केवल कवि का दूसरा अर्थ होता है तत्वदर्शी, कवयोप्यत्र वोहिता, बड़े बड़े तत्ववेत्ता लोग भी इस विषय के मोहित हो जाते हैं, श्री रूप गोस्वामी के ऊपर श्रीमद महाप्रभु का ऐसा वरद हस्त था कि बड़ी गंभीर काव्य प्रकाश के श्लोकों को उन्होंने राधा माधव रजपर इस प्रकार से प्रसिद्ध किया है कि उन कवि की महिमा का लाघव भी नहीं हुआ है और इनका कवि तो उद्धार रहित हो गया है। बहुत से लोग अब इस समय उनकी उनका पाठ करें बहुत समय लग जाएगा, मैं स्वस्थ भी नहीं हूँ और एक कमजोरी भी है, एक बार एक धारा तरंगी तो हो बीच में टूट जाती है तो फिर उसमें जोड़ लगाने में बड़ा समय लग जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में श्रीमद्रूप गोस्वामी चरण में प्रणाम करता हूँ और मुझे सभापति बनाया, यही महिमा नहीं है, ये इनकी बड़ी महिमा है जो मुझे इस प्रकार का सम्मान प्रदान करते हैं।
जबकि महाप्रभु की उपासना में तो गुरु गरलम सम्मान से बड़ा गरल कोई नहीं है, लेकिन नौकरी है, सभापति होने की भी एक नौकरी है, इधर अनुशासन रखा जाए, शांत रखा जाए, उन्होंने जो ये संत समाज में ये सेवा प्रदान की है उससे अपने सौभाग्य की सराहना करता हुआ और उनको स्वामी के चरण में अपना अनुकूषा नमन करता हुआ
नमो
भक्ति रसामृत सिंधु उसमें पर जानी
जितने भी भक्त है इसमें दुखी करा सकते हैं, तो गलेमाई उसका अंकन करके जो नीट बड़ी देखी उसने सरकार दिया। इसके तीन कारण बताए। पहला कारण उन्होंने बताया कि यद्यपि
जो
से प्रेम के विचार है ये भी बहुत सुंदर थी और प्राणी एक बात और इन्होंने की चंद्रमा
तिथि समाराधना के इस पर्व पावन अनुष्ठान में यहां श्री गुरु गोस्वामी पाद के पावन स्मरण और उनके श्री चरणारविंद में प्रणति वा पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए हम लोग सब एकत्र हुए हैं। श्री रूप सनातन मठ श्री महाराज जी के निर्देशन में श्री गौर हरि के जिस प्रेम संदेश और संचेतना को सर्वत्र प्रकाशित कर रहा है वह अपने आप में अत्यंत अत्यंत स्तुत्य है। श्रीमद् महाप्रभु का जगत को कोई अपूर्व अवदान रहा, उन्होंने सबसे श्रेष्ठ कोई वस्तु पात्र पात्र का विचार न करते हुए प्रदान की। पात्र पात्र विचार न करते न स्वम परम भीक्षते देया दे विचारो नहीं नवा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सैव भगवान कौरव परम गति। भगवान श्री गौर हम भक्तों की तलहत जीवों की एकमात्र गति है। यह कलयुग परम परम धन्य जहां श्री गौर हरि अवतरित हुए और गौर हरि ही अवतरित नहीं हुए उनके साथ पूरी निकुंज अवतरित हुई। श्रीमद् महाप्रभु के अवतार काल का जो समय रहा वह एक अद्भुत समय था। श्रीमद् महाप्रभु का प्रकट भी जिस समय निज प्रकट जिस समय कृपा करते हुए पृथ्वी मंडल पर अवतरित हुआ वो समय भी कोई अद्भुत था। और उस समय वृंदावन रसकों की राजधानी के रूप में तत्वतः विराजमान रहा। उस समय रसकों की पंगत विराजमान थी। काल के प्रभाव से पंगत तो अब उठ गई परंतु जूठन अभी भी शेष है। और यदि हमने उस कृपा को उस कृपा प्रसाद को जो प्रसाद अभी शेष है उस कृपा प्रसाद को यदि सहेजा नहीं तो हम इससे भी वंचित हो जाएंगे। वो समय कोई अद्भुत था। क्या रसपूर्ण स्थिति रही होगी श्रीमद् महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री बल्लभाचार्य श्री हरिदास जी वृंदावन की हरित्रयी हरिराम व्यास श्री हित हरिवंश और जितना भी रस समुदाय वह सारा रस समुदाय रसकों का समुदाय उस समय विराजमान रहा होगा और कहीं उनकी आपस में रस चर्चा रही होगी। वो रसिक मंडली कोई अपूर्ण रूप से विराजमान नहीं होगी। रसकों का जो परवेशन होता होगा जो पंगत होती होगी रस की ददात प्रतिगुणाती बुह्यमाक्षात पृछती भूंगते भोजयते जीवन षड्विधम प्रीति लक्षण कुछ देते होंगे कुछ लेते होंगे कुछ रहस्य की बात कहते होंगे रहस्य की बात पूछते होंगे। वो रस पंगत धीरे धीरे अंतर्धान हुई अंतर्धान हुई। ठीक है उस समय सब लोग तृप्त हो गए थे कहीं तृप्ति बची नहीं थी प्यास बची नहीं थी। और श्री अद्वैताचार्य को कहीं तर्जा में कहना पड़ा कि अब चावल बिक नहीं रहे हैं अपनी तर्जा में ये कहना पड़ा कि चावल भरे पड़े पड़े हैं चावल बिक नहीं रहे हैं क्यों सबको रसपूर्ण कर दिया गया था। शिव महाप्रभु के अवतार का जो प्रयोजन था, वह अवतार का प्रयोजन उस समय परिपूर्ण रूप से पूर्ण हो रहा था, हो चुका था। परंतु काल के प्रभाव से वो पंगत जब उठी, परंतु उस पंगत ने अपना रस प्रसाद कहीं छोड़ा और धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी बनती जा रही कि जो कणिका रह गई थी वह कणिका भी सहेजने वाले कोई नहीं रहे, और कणिका जो थी उस कणिका को भी यूं ही बहने दिया। जो कणिका बची उनको जिन्होंने सहेजा, जिन्होंने उसका संकलन किया, उनने श्री भक्तिवेदांत ठाकुर ने, अन्य अन्य रसजनों ने जो उस कणिका को सहेजा और उसका जो दान दिया, वह दान भी कोई कम नहीं था, वह भी अपूर्व था। और उसी पद्धति में, उसी परंपरा में श्री महाराज जी हाँ हमारे पास में विराजमान, हमारे ऊपर कृपा करने के। श्री रूप गोस्वामी की जो कृपा साधक समुदाय के ऊपर बरसी वह अद्भुत रही। श्री रूप श्रीमन महाप्रभु ही हैं। महाप्रभु के हृदय को यदि कोई जानने वाला वे श्री रूप गोस्वामी है, और श्री कर्णपुर गोस्वामी बात तो आज्ञा कर रहे हैं कि प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहजाब रूपे, मेयान रूपे, प्रभु रेक रूपे। तो जब श्री रूप गोस्वामी पाद की तिथि की समाराधना कर रहे हैं, तो रूप गोस्वामी पाद की है तिथि की समाराधना, श्रीमन महाप्रभु की ही समाराधना, क्योंकि श्री चैतन्य मनोभीष्ट यदि किसी ने प्रकाशित किया तो वो श्री रूप गोस्वामी जी ने किया। प्रभु एक रूपे, श्री प्रभु से के ही अन्यतम स्वरूप होकर के श्री रूप गोस्वामी पाद विराजमान है। सत्य भी है, श्री युगल प्रेम का जो स्वरूप वह सखी गण ही है, मंजरी गण ही है, और उनके द्वारा ही उस रस का, रस की प्राप्ति हो सकती है। यदि कोई राम जी से कहे, श्री रामचंद्र जी से, कि आप कुछ कहिए, रामचंद्र जी वर्ण आश्रम धर्म, धर्म की स्थापना, ज्ञान भक्ति कहते रहे, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहेंगे, अपना वर्णन स्वयं नहीं करेंगे, प्रजा को धर्म का उपदेश करते रहेंगे, ज्ञान कर्म की बात बताते रहेंगे, मर्यादा का उपदेश करते रहेंगे। श्री जानकी जी से कोई कहे कि आप कुछ बोलिए, श्री जानकी जी श्री राम के रूप, राम की कृपालता, राम के गुणों का ही गायन करेंगे। परंतु यदि श्री हनुमान जी से कोई कहे कि आप कुछ कहिए, तो श्री हनुमान लाल युगल सरकार की महिमा का गायन करेंगे, राम सीता की महिमा का गायन करेंगे, और केवल राम सीता की महिमा का ही गायन नहीं करेंगे, चारों भैयाओं की, चारों मैयाओं की महिमा का गायन करेंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्री उर्मिला जी शुद्ध कीर्ति सबकी, सबकी महिमा का गायन करेंगे, सब मैयाओं का, सब भाइयों का महिमा का गायन करेंगे। परंतु यदि कोई हनुमान जी के किसी सेवक से कहे तो वो हनुमान जी की महिमा का भी गायन करेगा। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण का सीधा सीधा जो दास बन रहा है, उस दास का जो आस्वादन, उस दास के आस्वादन से भी बढ़कर के कहीं जो युगल का अनुगत होकर के विराजमान उसका आस्वादन है, और जो युगल का अनुगत होकर के विराजमान है उन अनुगतों के भी अनुगत दासानुदासों का जो आस्वादन है वह और भी अधिक बड़ा होकर के विराजमान है। अतः बड़ी वैष्णवों में रूपानुग्रह सेवा प्रसिद्ध रही है। राधानुग्रह सेवा का एक अभिन्न नाम रहा, राधानुग्रह सेवा का ही एक परिष्कृत स्वरूप सामने रहा, वह स्वरूप रहा श्री रूपानुग्रह सेवा। और श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि की समाराधना या तिथि की समाराधना श्री महाप्रभु और श्री रूप दोनों अभिन्न होकर के विराजमान, और अभिन्न होने के कारण श्री रूप गोस्वामी जी की यह समाराधना तिथि की समाराधना यह श्री महाप्रभु की ही समाराधना है। जयंती उत्सव की अपेक्षा तिथि समाराधन यह कहीं और भी अधिक महत्वपूर्ण है, कम नहीं है, क्योंकि जन्मतिथि और अंतर्धान तिथि इन दोनों तिथियों की जो समाराधना है इनमें जो दृष्टि है वो दृष्टि केवल भंगिमा का अंतर है। जयंती में हमको कृपा प्राप्त हो, आप हमको कुछ दीजिए, ये भाव विराजमान है, परंतु अंतर्धान जो तिथि है उसमें आपने हमको कुछ दिया हम उसके कृतज्ञ हैं, यह भाव कहीं विराजमान है। बात एक है, कृतज्ञता दोनों में विराजमान है, आनुकूल्य कृष्णानुशीलन दोनों में विराजमान है, परंतु एक में देने की प्रार्थना है, एक में सहेजने की प्रार्थना है। श्री रूप गोस्वामी पाद का यह जो समाराधन वह उनकी तिथि का समाराधन सबके लिए परम हित का। श्री रूप का एक अपूर्व योगदान रहा, उस समय भक्त साहित्य बहुत कुछ लिखा जा चुका था, भक्त सिद्धांतों की बहुत कुछ स्थापना हो चुकी थी। श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रायः नया कुछ नहीं कहा, जो शास्त्रों में प्रतिपादित था उसका ही वे विवेचन कर रहे हैं। परंतु एक बहुत बड़ी समस्या थी कि शास्त्रों के उस महाअरण्य में उस जंगल में से फूलों को चुनकर के एक गुलदस्ता बना देना, यह एक बहुत बड़ा काम था। इतने ज्यादा सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बीच में पुंखानुपुंख शास्त्रोद्धार पूर्वक राधानुग्रह भक्त मार्ग की स्थापना कर लेना, यह एक बहुत बड़ा योगदान था। और श्री रूप गोस्वामी पाद ने यह जो योगदान किया वह योगदान ऐसा जिसके कारण श्री रूप गोस्वामी पाद की का स्वस्थवाचन प्रत्येक ने किया, जो शुद्ध बौद्धिक स्तर पर विराजमान है, केवल एकेडमिक जिनकी बैकग्राउंड है और कुछ भी नहीं जानते हैं, जिनको उपासना से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे लोग भी श्री रूप गोस्वामी पाद के कृतित्व को देख करके उनके योगदान को देख करके उनका स्वस्थ वाचन करते हैं। जो साधक हैं वे भी उनका स्वस्थ वाचन करते हैं, जो कवि हैं वे भी उनका स्वस्थ वाचन करते हैं। तो संपूर्ण रूप व्यक्तित्व को, श्री रूप गोस्वामी के संपूर्ण अवदान को तीनों दृष्टियों से देखा जाए, विचार की दृष्टि से, जीवन जीने की दृष्टि से और गावी की दृष्टि से, इन तीनों ही दृष्टियों में जो साधक रहे, तीनों ही क्षेत्रों में जो आगे बढ़ने वाले रहे, उन तीनों ने ही श्री रूप गोस्वामी की जो कृतियां रही, रूप गोस्वामी का जो कर्तृत्व रहा उस कृतित्व का स्वस्थ वाचन किया, उन्होंने उनकी प्रशंसा की। अनेक अनेक समस्याएं रही, प्रायः दुष्यंत शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतला आदि के जो काव्य ग्रंथ थे, लौकिक काव्य ग्रंथ थे, उन लौकिक काव्य ग्रंथों की ही या रामायण महाभारत को उपजीव्य बना करके उस समय जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य में का जो समीक्षण किया गया रसशास्त्र की दृष्टि से, काव्य प्रकाश आदि आदि जितने भी प्रकरण ग्रंथ रहे काव्य शास्त्र के, उनमें भी जिस दृष्टि से विवेचन किया गया शास्त्र का और रस का, उसमें रस मन की कहीं एक चित्त की एक वृत्ति थी, वह मूल प्रवृत्तियों के साथ में कहीं जुड़ा हुआ था, इंस्टिंक्ट्स के साथ में कहीं जुड़ा हुआ था, जो फीलिंग्स थी वे फीलिंग्स कहीं जो इंस्टिंक्ट है उन इंस्टिंक्टों के साथ में जुड़ी हुई है, मूल प्रवृत्तियों के साथ में, कि भाई काम की प्रवृत्ति है, भय की प्रवृत्ति है, बात्सल्य की प्रवृत्ति है, पलायन की प्रवृत्ति है, कुछ प्रवृत्तियां जो थी मनोविज्ञान की, उन प्रवृत्तियों के साथ में कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और उन दृष्टियों से ही रस का विवेचन, उन दृष्टियों से ही इन काव्य शास्त्रों में मम्मट आदि ने, काव्य प्रकाश आदि ने, साहित्य दर्पण आदि ने उस दृष्टि से ही उनका विवेचन किया, और रस का सारा विवेचन उन इंस्टिंक्ट्स पर, उन मूल प्रवृत्तियों के ऊपर कहीं आधारित रहा। भक्ति एक मूल प्रवृत्ति तो नहीं है, मूल प्रवृत्ति होती तो वहां सबको प्राप्त होती, परंतु भक्ति मूल प्रवृत्ति नहीं है, भक्ति तो कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। जो आसुरी जीव है जिनके ऊपर श्री प्रभु ने कृपा नहीं की, उनके हृदय में भक्ति का संचार नहीं है, अतः भक्ति काम की प्रवृत्ति की तरह से एक मूल प्रवृत्ति नहीं है, वह कृपा साध्य वस्तु ही है, वह न तो सहज सिद्ध है, स्वाभाविक तो है, निज प्राप्त तो है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि कोत प्रयास हो, अरे असुर बालको ऐसा कौन सा अनुप्रयास है, श्री प्रभु तो तुम सबके हृदय में विराजमान हो, जो सबके हृदय में विराजमान है वह जल्दी से ही प्रकट हो जाएगा, सबके हृदय में प्रभु मानो विराजमान है, अंतर्यामी है, प्रभु भले विराजमान हो, परंतु प्रभु की कृपालुता का अनुभव करना, प्रभु की भक्ति का अनुभव करना, यह हर एक के बस की बात नहीं है। प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, अंतर्यामी सबके हृदय में विराजमान है, परंतु अंतर्यामी में निष्ठा सबके हृदय में प्राप्त नहीं है। ज्ञान होना एक अलग चीज है और ज्ञान निष्ठा होना अलग चीज है। भक्ति क्या है इस बात का ज्ञान होना यह जीवन को कल्याण करने वाला नहीं है, भक्ति में निष्ठा होना यह जीवन का कल्याण करने वाला है। मैं भक्तों की बात नहीं कह रहा हूं, कुछ देर के लिए ज्ञानियों की बात कही, तो ब्रह्म ऐसा है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म आदि, यह जो विवेचन है यह विवेचन किसी को मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं है, यह ज्ञान मात्र किसी को मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं होता है। ज्ञान में निष्ठा होना, अखंडाकारता वृत्ति को प्राप्त करना, और एक ज्ञानी के दृष्टि से आम ब्रह्मास्मि आदि जो स्थिति है उस स्थिति को उसे प्राप्त कर लेना, यह जो है यह उसे मोक्ष प्राप्त करने वाली है। तो ज्ञान निष्ठा बड़ी चीज है, ज्ञान की प्राप्ति यह बड़ी चीज नहीं है। ऐसे ही भक्ति के स्वरूप को जान लेना यह बड़ी वस्तु नहीं है, भक्ति में निष्ठा होना यह बड़ी वस्तु है। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है यह ज्ञान बड़ी चीज नहीं है, परमात्मा की कृपा का अनुभव कर लेना यह बड़ी चीज है। ऐसी स्थिति में परमात्मा भले सबके बीच में के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान है, परंतु भक्ति उसको ही प्राप्त है जिसके ऊपर उसकी कृपा हुई है। अतः यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता भाविता, जब भगवान जिसको अनुग्रहित करके अपनाते हैं, भवात वर्गो भ्रमतो यदा भवे जन से यदे चुप्त समागम समागमो यदि तदेव सद्यतो परावरेशे त्वयि जायते रति। श्री प्रभु संसार में भ्रमण कराते कराते यदि किसी जीव को किसी